ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहं तीर्थास्पदं शिववीरिञ्चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतपालभवाब्धिपोतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् परब्रह्म सद्गुरु प्रणम्य पुनि सब संत नमो हरि रामा मुर भवन में या पद समान कोई अधम जीव तुम तारिया तुम ही तारे संत अब कृपा मो पर करहु यो हरिदेव कहंत सद्गुरु से देवी नति परब्रह्म सुपरणाम अनंत कोटि संत रामदास निषदिन करूं सलाम नमो राम गुरुदेव जी जनत्रिकाल के वंद विघ्नहरण मंगल करण रामदास आनंद। कुछ रहस्यात्मक प्रसंग बता रहे हैं। जयदयाल जी गोविंदका ने मानव मात्र को भगवत प्राप्ति कराने के उद्देश्य से जो कार्य किए उसे ध्यान में रखते ही वे कौन थे, ये प्रश्न गूंजता है कि जयदयाल जी कौन थे। बिना पूर्व जन्म के विशिष्ट संस्कार, देवी कृपा या देवत्व के इस तरह का कार्य कैसे हो सकता है। इस महामानव के जीवन वृत्ति की कुछ घटनाएं आप सुनिए। संवत 2008 सन 1952 में रामनिवास जी सराफ के छाती में तकलीफ हुई तथा रामनिवास जी सराफ को ज्योतिषियों ने मार्केश बता रखा था। घर पर उनकी दादी जी बीमार चल रही थी। रामनिवास जी सेठ जी के पास आए कि मेरे हार्ट की तकलीफ हो गई है, घर पर दादी जी बीमार है, मेरे को ज्योतिषियों ने मार्केश बताया है, मुझे बहुत घबराहट हो रही है, अब मैं घर जाना चाहता हूं। ऋषिकेश आए हुए थे कि अब मैं घर जाना चाहता हूं। सेठ जी ने पूछा कि मार्केश क्या होता है। रामनिवास जी ने कहा कि ज्योतिषी ने बताया है कि शरीर जा भी सकता है और नहीं भी जा सकता है, कुछ योग ऐसे बने हैं शायद शरीर जा सकता है और शायद नहीं भी जाए। सेठ जी ने कहा आपको ज्योतिषी ने दो बात कही है, किंतु मैं तुमको एक बात कहता हूं, तुम्हारा शरीर नहीं जाएगा। आपने मेरी बात पर ध्यान दिया क्या। रामनिवास जी ने कहा हां सुन ली। सेठ जी ने पुनः कहा कि मेरा भविष्य की बात बोलने का स्वभाव नहीं है, आपके बहुत घबराहट थी इसलिए कह दी है। उन रामनिवास जी का शरीर संवत 2057 सन 2000 में चले, 48 वर्ष के बाद, 49 वर्ष के बाद बता। उनचास वर्ष तक जीवित रहे। एक व्यक्ति कनखल में मरणासन्न पड़ा था। सेठ जी मोहनलाल जी पटवारी एवं कुछ और व्यक्तियों के साथ वहां गए थे। वह व्यक्ति बड़ी प्रसन्नता से सेठ जी से मिला। उसके बाद सेठ जी की गोद में उसका शरीर शांत हो गया। सेठ जी बोले मेरा यहां कनखल में आना इसी प्राणी के लिए था, इसी के उद्देश्य से आया था। फिर सेठ जी रवाना हो गए, मोहनलाल जी पटवारी के जिम्मे उसके दास संस्कार की क्रिया कर दी। वो कोई सत्संगी वगैरह नहीं था, यही था। एक बार सेठ जी के एक परम मित्र थे हनुमान भगत जी, उनके शरीर में बहुत बड़ा गहरा घाव हो गया, बहुत जलन हो रही थी। सेठ जी हंसते हंसते आए, हनुमान भगत जी ने कहा मेरे तो पीड़ा हो रही है, तुमको हंसी आ रही है? सेठ जी बोले तो पीड़ा मेरे को दे दे। हनुमान भगत जी ने कहा ऐसे कैसे हो सकता है? सेठ जी बोले अच्छा अब मेरी बात मत टालना, मेरी बात मत काटना, आधी पीड़ा मुझे दे दे। उनकी सम्मति मिलने पर सेठ जी के शरीर में उसी स्थान पर आधा घाव हो गया और उनका आधा घाव मिट गया। अब एक बड़ी हंसी की बात है, स्वामी राम सुखदास जी महाराज के सहपाठी संत थे चिमन राम जी। चिमन राम जी को सीरा खाने का बड़ा शौक था। यहां सीरे को हलवा लिखा है, सीरे अपन मारवाड़ी में बोलते हैं, हलवा सब जगह चलता है, तो हलवा खाने का बहुत शौक था। वो कहते थे कि मेरे को पता चले कि कल हलवा बनेगा तो मेरे हलवे का चिंतन बहुत होता है, कल हलवा मिलेगा, कल हलवा मिलेगा, है मेरी आदत, मैं क्या करूं। चिमनराम जी ऋषिकेश आए, वहां पर बट वृक्ष पर भिक्षा के अंदर हलवा मिला, थाली भर ली, वे खाने लगे तो एकदम फीका लगने लगा। उन्होंने मन में विचार किया कि देखो हलवा बनाना नहीं आता, चीनी नहीं डाली इसमें। फिर मन में आया औरों से पूछूं कि हलवा कैसा है, कहा कि ठीक है। फिर मन में आया कि फीका क्यों लग रहा है मुझे, तो बाद में अपने आप ही ध्यान आया कि सेठ जी पास में है ना, इसलिए सिरा फीका लग रहा है। तो वे सेठ जी से कुछ दूर चले गए तो वहां थोड़ा थोड़ा मीठा लगने लगा, और बहुत दूर चले गए तो फिर खूब सिरे का आनंद आया। काफी दूर जाने पर पूरा स्वाद आया। इससे सिद्ध होता है कि महात्माओं के यहां भोजन होता है वो स्वाद के लिए नहीं होता है, भोग के लिए नहीं होता है। एक दिन ऋषिकेश में सायंकाल गंगा जी के तट पर सत्संग हो रहा था, ध्यान से सुनिएगा। उस सत्संग में भवसागर से कैसे पार हों इस विषय पर चर्चा हो रही थी, बड़ी गंभीर चर्चा चल रही थी। उसी समय में कुछ स्त्रियां आई और बोली कि सेठ जी हमारे साथ के लोग उस पार चले गए, अब अंधेरा हो गया, नाव बंद हो गई, हमें उसके पार भिजवा दो ना। सेठ जी ने कहा भाई देखो आप में से कोई जाओ, नाव वाले से बोल दो, मेरा नाम लेकर बोल देना, इनको पार कर दो। परंतु वहां इतनी महत्वपूर्ण चर्चा चल रही थी, कोई उठा ही नहीं, किसे उठने का जी नहीं चाहता था। अंत में सेठ जी स्वयं उठे और उन्हें गंगा पार करने के लिए नाव में बैठाकर फिर वापिस आए। कुछ सत्संगी भाइयों ने कहा सेठ जी इतनी महत्वपूर्ण बात, भवसागर से पार करने की बात चल रही थी, आप उन्हें गंगा पार कराने चले गए? भवसागर बड़ा है कि गंगा जी को पार करना बड़ा है? ये आज नहीं तो कल चली जाती। सेठ जी बोले कि मैंने तुमको भी भवसागर से पार होने का मौका दिया था, आप चूक गए, मैं तो उन्हें भवसागर से पार करके आया हूं, अर्थात मेरी बात मान लेते तो आपको भवसागर से पार होने का मौका दिया था, आप नहीं माने। मैं गया तो मैंने उनको भवसागर से पार कर दिया। इसलिए बड़े पुरुषों की आज्ञा का पालन करना चाहिए। अब और एक प्रसंग है, गीता भवन स्वर्गाश्रम में पहले पक्के कमरे बहुत कम थे, कोठड़ियां ज्यादा थी, जिसमें सत्संगी भाई बहनों को सेठ जी यथा योग्य ठहरा देते, आप यहां रहो आप यहां रहो। एक दिन रात्रि में अचानक तेज बारिश आई, जिस स्थान में पंडित हरिप्रसाद जी नापासर वाले अपनी मां के साथ ठहरे हुए थे, उसमें पानी कुछ ज्यादा ही चूने लग गया। हरिप्रसाद जी की मां थी, बड़ी तेज थी उस स्वभाव में भी, उनकी मां थोड़ी खींच कर बोली, सेठ मुंह देकर टीका काटते हैं। ऐसा कहने में उनका आशय यह रहा होगा कि हम गरीब हैं इसलिए हमको टूटा फूटा मकान दिया, पैसे वाले होते हैं उनको अच्छा मकान देते हैं। उसका तो कहना हुआ, इतने में सेठ जी लालटेन लेकर आए और बोले, मां जी आप दूसरी जगह चलो, यहां पानी काफी बरस रहा है, आपकी व्यवस्था दूसरी जगह कर दी है। एक लड़का अपनी मासी के साथ जोधपुर से गीता भवन स्वर्गाश्रम में सेठ जी से मिलने आया। सेठ जी ने कहा कि आप लोग समय रुपया खर्च करके इतनी दूरी से हमसे मिलने आए, इसके अलावा आप कर भी क्या सकते हो, आपको जो करना वो तो कर दिया, परंतु अब मेरी तरफ से आपको ये कहना है कि आप लोग ये मत मान लेना कि अब हम लोगों का पुनर्जन्म होगा, यही मान लेना कि अब पुनर्जन्म तो नहीं होगा। वापस जाने पर लड़के की मौसी उस समय मरी जब लड़का घर से बहुत दूर था, उसके आने के पहले दाह संस्कार हो चुका था। वापस आते ही लड़का फूट फूट कर रोने लगा, रोते रोते उसे उसकी मासी दिखाई दी और वो मासी बोली कि तुम्हें सेठ जी की बात याद नहीं है क्या, भूल गए, तुम्हारे रोने से मेरी मुक्ति में बाधा पहुंच रही है। यह सुनते ही लड़का बहुत प्रसन्न हो गया और मासी के शेष काम में लग गया। मरने पर रोना नहीं चाहिए। शिव भगवान जी क्याल की सेठ जी में बड़ी श्रद्धा थी, उनकी लड़की विवाह के योग्य हो गई। उनकी पत्नी ने कहा कि लड़की के विवाह की चिंता क्यों नहीं करते हो, और तो कई काम संभालते हो, लड़की का विवाह करना है। वे बोले कि मैं तो खोजने जाऊंगा नहीं, कोई चलाकर आएगा तो विवाह कर दूंगा, मेरे से इधर उधर फिरा नहीं जाता है, मन ही नहीं करता। उसी रात स्वप्न में सेठ जी दिखे और पूछे कि के हालचाल है, तो वो बोले कि और तो सब ठीक है। वे बोले सब कुछ ठीक है, लेकिन मेरी स्त्री लड़की के विवाह के लिए बहुत कह रही है। सेठ जी बोले इसका विवाह तो बैसाख शुक्ला सप्तमी को निकला है, ये समय निकल गया है इसका, बैसाख सुदी सातम को हो जाएगा। शिव भगवान जी बोले अभी तो सगाई नहीं हुई, फिर ब्याह कैसे होगा। सेठ जी ने कहा ये इसके विवाह की तिथि है, स्वप्न टूट गया और सेठ जी की बताई हुई निश्चित तिथि पर ही उस कन्या का विवाह हुआ। बरेली के निवासी ठाकुर प्रसाद जी जैन ऑडिट करने के लिए गीता प्रेस आया करते थे। एक बार तार मिला कि उनका लड़का मर गया। सेठ जी प्रवचन के लिए जा रहे थे तो वे जैन साहब ने उनसे कहा, सेठ जी क्या करूं, बहुत खराब तार आया है। रोने लगे, के आयो, मेरा लड़का मर गया, सब काम छोड़ के मुझे घर जाना होगा। सेठ जी ने कहा कि ठीक है, पहुंच करके राजी खुशी का समाचार देना। वो बेचारे समझे नहीं, वहां सुखदेव जी थे, उन्होंने कहा जैन साहब आप निश्चिंत रहिए, आपका लड़का मरा नहीं है। तभी तो सेठ जी ने कहा कि पहुंच करके राजी खुशी का समाचार देना, और यही हुआ। वो घर पर गए, वो तार झूठा निकला, कोई और मरा तार इनके लिए नाम आ गया। एक पंजाबी कंपाउंडर था, नाम जप में बड़ी श्रद्धा थी तथा जयदयाल जी गोविंदका में भी काफी श्रद्धा थी। एक बार वो काफी बीमार होकर अस्पताल में भर्ती हो गया। उसको यमराज जी के दूध दिखने लगे। उसने कहा, सेठ जी आओ आओ, सेठ जी आओ आओ, यमदूतों को भगाओ। तो सेठ जी आए और अपनी लाठी जोर से पटकने लगे, यमदूत भाग गए। और सेठ जी ने कहा, घबराओ मत, खूब भजन करो, अभी तेरी उम्र बाकी है, कुछ पूछना हो तो राम सुख जी से पूछ लेना, स्वामी जी महाराज से कुछ पूछना हो तो राम सुख जी से पूछ लेना। ये घटना उस समय की है जब सेठ जी का शरीर शांत हो गया था, ये कितने वर्ष बाद की बात है। वह स्वस्थ हो गया, काफी वर्षों तक भगवान के भजन में ही रहा। एक बार सेठ जी वृंदावन में साधुओं की सभा में गए, उन्हें देखकर सभी लोग खड़े हो गए। सेठ जी ने हाथ जोड़कर कहा कि मैं तो एक साधारण वैश्य बालक हूं, आप लोग खड़े हो गए ये मेरे लिए लज्जा की बात है। वहां उड़िया बाबा ने कहा, आप भले ही अपने को साधारण वेश्य माने या कुछ भी माने वो आप जाने, किंतु आपके यहां पैर रखते ही यहां का वातावरण एकदम बदल गया। एक बार चक्रधरपुर में 5-6 व्यक्तियों का भोजन बना, 30-35 व्यक्ति भोजन करने वाले हो गए। सेठ जी ने भोजन पात्र को कपड़े से ढक दिया और स्वयं निकाल निकाल करके भोजन देने लगे, पुरुषने लगे। जब सब ने भोजन कर लिया तब तो वहां सेठ जी हट गए और भोजन कम नहीं पड़ा। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो भारत के प्रधानमंत्री थे, उनके बहुत चहेते मंत्री लाल बहादुर शास्त्री थे। लाल बहादुर शास्त्री विभाग विहीन मंत्री थे। लाल बहादुर शास्त्री जी एक बार गीता भवन में अपने परिवार समेत आए। सेठ जी ने उनके आतिथ्य का काम गोपाल जी मोता और पूनम जी कोठारी के जिम्मे लगाया, दोनों बीकानेर के थे। बाद में जब वे सेठ जी से मिले तो बातचीत के सिलसिले में सेठ जी ने कहा कि लाल बहादुर जी, अब नेहरू जी के बाद में आपका ही नंबर है। और यही हुआ, नेहरू जी के बाद में वे ही प्रधानमंत्री बने। सेठ जी की मृत्यु इनके प्रधानमंत्री के समय हुई थी, लाल बहादुर शास्त्री जी की। सेठ जी के भाई मोहनलाल जी थे, उनको कैद खाने में डाल रखा था। हनुमान प्रसाद जी पोद्दार ने प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री को पत्र दिया, कि जयदयाल जी गोविंद का भाई व्यर्थ में ही कैद खाने में डाल दिया गया है, उसको तत्काल छुड़ाओ और उनको सेठ जी का क्रियाकर्म करना है। दाह संस्कार तो हो गया, उनके पीछे सब करना है, आप उनको छुड़ाओ। तो सुनते ही लाल बहादुर शास्त्री ने तत्काल उत्तर प्रदेश सरकार को फोन करके उसी समय छुड़ा दिया। एक सत्संगी भाई स्वर्गाश्रम में गंगा पार कर रहे थे, नाव का इंजन फैल हो गया, लंगर भी डाला लेकिन वो भी फैल हो गया। नाविक ने कहा अब तो बचने का कोई उपाय नहीं है, भगवान को याद करो। सभी सत्संगी भगवान को याद करने लगे, बड़े विरह में डूबे। उस समय जयदयाल जी गोविंद का अपने कुछ सत्संगी भाइयों के साथ कमरे में बैठे थे, उनके मुंह से अनायास निकलने लगा, अरे बचाओ बचाओ बचाओ। लोगों ने पूछा सेठ जी आप प्रवचन करते करते ये क्या बोल रहे हो, बचाओ क्या हो गया? तो बचाओ बचाओ कहना हुआ, उधर वो नाव गुड़कती गुड़कती जैसे तैसे सकुशल किनारे आ गई। सत्संगी भाई सकुशल वापस आकर प्रसन्न मन से यह घटना सेठ जी को बताने लगे कि मुझे लगा कि किसी ने रस्सा बांधकर नाव किनारे खींच लिए। सेठ जी कुछ नहीं बोले, नीचा मुख किए, थोड़ी सी मुस्कुराहट हुई। सेठ जी मुस्कुराने लगे। सेठ जी के एक सत्संगी भाई ने देखा कि सेठ जी के हाथ लाल हो गए, बस उसे समझते में देरी नहीं लगी और नाव बचाने वाला कौन था ये पता चल गया। एक दिन गोविंद भवन कलकत्ता में सेठ जी से मिलने कोई एक आदमी सुबह आ गया। बद्रीदास जी ने दरवाजा खोलते ही सिर पर हाथ मारा कि सुबह सुबह कैसे आदमी का मुंह देखा है, क्योंकि वो आदमी दुष्चरित्र और पापी समझा जाता था। सेठ जी गोविंदका ने उनसे कहा कि तुम मेरा साथ करते हो और तुम्हें अभी तक इतना ही ज्ञान नहीं है कि जो मेरे से मिलने आया है क्या वो पापी रह गया क्या? बद्रीदास जी को बड़ा विचार आया। एक बार सेठ जी प्रवचन कर रहे थे, उस समय एक सज्जन आए, भाई जी उनसे गले लगकर मिले। नारायण श्रावगी के मन में आई, कह रहे सेठ जी कभी मेरे से भी गले मिल सकते हैं क्या? प्रवचन समाप्त हुआ, सेठ जी ने कहा ए छोरा इधर आ, गले लगकर मिलने की तेरे मन में आ रही थी ना, ले आजा मिल ले। एक बार सेठ जी की थाली में चूरमे के लड्डू की तरह सामग्री परसी गई, चूरमे का लड्डू सा बनाया हुआ। एक सत्संगी भाई वही था, उसके मन में आई कि ये काय के महात्मा है, ये तो चूरमा खाते हैं, महात्मा होता है वो चूरमा थोड़ी खाता है। सेठ जी समझ गए। सेठ जी तुरंत बोले ये चूरमा नहीं है, न तो इसमें घी है न चीनी है, मेरे दांत में दर्द होता है इसलिए मैंने रोटी चूर कर लड्डू के रूप में रखी है, रोटी चूरी हुई और कुछ नहीं है। एक सत्संगी भाई कलकत्ता में सांवरिया जी के मंदिर में दर्शन करने गया। सांवरिया जी के मंदिर में प्राय जूते गुम जाते हैं, वो सत्संगी नया जूता पहनकर गया था। क्या आदमी, भगवान से वहां जाकर हाथ जोड़कर प्रार्थना की, हे भगवान मैं आपके दर्शन करने के लिए आया हूं, आज मेरा कोई जूता न ले जाए, आप मेरी रक्षा करना। ये सत्संग करी। वो बाहर आया तो जूतों के पास सेठ जी खड़े थे और सेठ जी बोले ये काम तुमने हमारे जिम्मे यही काम लगाया है क्या? कोई कल्याण की बात बोलता तो कितना लाभ होता। एक बार स्वामी राम सुखदास जी महाराज और मोहनलाल जी पटवारी सेठ जी के पास जा रहे थे, कोई मार्ग में चर्चा हो रही थी, कोई गुत्थी सुलझ नहीं रही थी। दोनों ने विचार किया कि सेठ जी से जाकर पूछेंगे। जब सेठ जी प्रवचन के लिए जब सेठ जी के पास पहुंचे तो सेठ जी प्रवचन के लिए बैठ चुके थे, और उस प्रवचन में सेठ जी ने बिना पूछे ही समाधान कर दिया।